आप हैं SBS हिंदी के साथ। पेश है समाचार कुमुद मिरानी के साथ। आज के मुख्य समाचारों में साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में क्रिसमस से पूर्व प्रतिबंधों में ढील। विक्टोरिया के कोविड 19 ट्रेसिंग प्रबंध को कोरोना वायरस में बढ़त से जूझने के लिए पाया गया अयोग्य। और आज भारत में किसानों की भूख हड़ताल। लीजिए अब सुनते हैं समाचार विस्तार के साथ। क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियों से पूर्व कोरोना वायरस के प्रतिबंधों में ढील बरती गई है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोग अपने घर पर 50 लोगों तक की संख्या को आमंत्रित कर सकते हैं और पब में खड़े रहकर भी ड्रिंक ऑर्डर किए जा सकते हैं। शादियों, अंतिम संस्कार और अन्य निजी लाइसेंस प्राप्त कार्यक्रमों में 200 लोग भाग ले सकेंगे और जिम तथा सिनेमाघरों में भी लोगों की संख्या में बढ़ावा किया गया है। आज यानी सोमवार दोपहर से क्वींसलैंड के सभी वेन्यूज, पब्स, क्लब्स और नाइट क्लब्स में डांस फ्लोर का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, बशर्ते लोग 2 स्क्वायर मीटर्स के फासले का पालन करते रहें। विक्टोरिया राज्य के कोरोना वायरस ट्रेसिंग प्रबंध यानी स्रोत का पता लगाने के प्रबंध की ऊपरी सदन की जांच में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ये सिस्टम कारगर नहीं था। रिपोर्ट में पाया गया कि ये स्वास्थ्य सिस्टम कोविड 19 महामारी के दौरान कुछ पड़ावों पर मुकाबला नहीं कर सका और कॉन्टैक्ट का पता लगाने वाले कर्मचारियों को अपने हाथ से ही जानकारी एंटर करनी पड़ रही थी। रीजन पार्टी सांसद फियोना पैटन ने इस जांच की अध्यक्षता की थी। वो कहती हैं कि स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की ज़रूरत है और इस योजना में डॉक्टरों को भी शामिल नहीं किया गया था।
And that's actually one of the recommendations of the report is that we continue in working with GPs to ensure that they are part of the system and to ensure that we're actually getting advice from the GPs because they are on, as I say, they are on the ground and they understand their communities.
Poorva Resources Mantri Matt Canavan, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनावों के बढ़ने के दौरान ऑस्ट्रेलिया से मांग कर रहे हैं कि वो चीन को आयरन और निर्यातों पर टैरिफ या सीमा यानी सीमा शुल्क लगाए। नेशनल्स के सेनेटर कहते हैं कि चीन इस संसाधन पर बहुत निर्भर करता है और ये सीमा शुल्क लागू कर देने से एशिया के इस विशाल राष्ट्र को ऑस्ट्रेलिया के बीफ, बार्ली, वाइन और समुद्री खानों के विरुद्ध व्यापार कर लागू करने के लिए दंड भुगतना पड़ेगा। इस प्रस्ताव की भरपूर निंदा हुई है और वर्तमान रिसोर्सेज मंत्री कीथ पिट ने जोर डालते हुए कहा है कि सरकार नियमों पर आधारित व्यापार प्रणाली का ही पालन करती रहेगी। लेबर के पर्यावरण प्रवक्ता मार्क बटलर ने ABC पर बोलते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया को चीन पर इतना निर्भर रहना खत्म कर देना चाहिए।
I have to say that ramping up a trade war around our most valuable and successful export seems ultimately to be pretty self-defeating. But I do agree with Senator Canavan that Australia should be doing more, the government should be doing more to help our exporters diversify their markets. We've been urging the government to do that for many months now as the Chinese position in relation to various exports has become clearer.
क्वींसलैंड की सरकार को विश्वास है कि स्वेच्छापूर्ण मृत्यु कानून को लागू करने में हो रहे विलंब से नए कानूनों के लागू होने तक राज्य में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। प्रीमियर अनास्तासिया पालुशे ने ये संकेत दिया कि अगर लेबर पार्टी अक्टूबर के चुनाव जीत जाएगी तो वे अगले साल की शुरुआत में मदद के साथ स्वेच्छा मृत्यु कानून लागू कर देंगी। मगर अब लॉ रिफॉर्म कमीशन विधेयक का मसौदा मई तक ही पेश होगा और कानून जून में लागू हो सकेगा। एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में विदेशी भाषाओं में जारी किए जाने वाले 88% इश्तहारों में मिनिमम वेज नियम से कम आय लिखी जा रही है। यूनियंस की न्यू साउथ वेल्स रिपोर्ट ने 3000 रोजगार संबंधी विज्ञापनों का विश्लेषण किया और ये पाया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों को आय चोरी को भुगतना पड़ रहा है। 90% से अधिक वियतनामी भाषा के नौकरी के विज्ञापनों में कानूनी आय दर से कम आय लिखी गई थी और चीनी भाषा और कोरियाई भाषा में भी 85% इश्तिहारों का यही हाल था। नेपाली में 86%, पुर्तगाली में 84%, स्पैनिश में 76% इश्तिहारों में नियम से कम वेतन लिखे जा रहे थे और सबसे कम वेतन $8 प्रति घंटे दिया जा रहा था नाखून बनाने वाले टेक्नीशियंस को। यूनियंस न्यू साउथ वेल्स के सचिव मार्क मोरे कहते हैं कि ये कानूनी तौर पर ज़रूरी होना चाहिए कि नौकरी के विज्ञापनों में न्यूनतम आय दर होनी ही चाहिए। वे फेडरल सरकार से मांग कर रहे हैं कि आमदनी को लेकर जांच की जाए और प्रवासी कर्मचारियों की हिफाजत की जाए। न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी भाग और क्वींसलैंड के दक्षिण पूर्वी भागों में रहने वाले बदतरीन मौसम और मूसलाधार बारिश का सामना कर रहे हैं। वहाँ नदियों में भी जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम कार्यालय ने क्वींसलैंड में दक्षिण पूर्वी इलाकों तथा फ्रेजर आइलैंड को बाढ़ की चेतावनी दे रखी है और न्यू साउथ वेल्स में भी सख्त चेतावनी दी गई है। लेबर के नेता एंथनी ऑल्बनीज़ी कहते हैं कि बाशिंदों की सुरक्षा और बाढ़ के खतरे की चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने यात्रियों और स्थानीय लोगों से निवेदन किया है कि बाढ़ के पानी में वो ड्राइव ना करें और आधिकारिक सूचनाओं का वो पालन करते रहें। कुछ अन्य समाचारों में, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाले प्रथम लोगों में शामिल होंगे। फाइजर बायोटेक वैक्सीन की पहली खुराकें ट्रक्स और हवाई जहाज़ों में चढ़ा दी गई हैं और अब वहाँ टीके लगवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग होम में रहने वालों और व्हाइट हाउस के ज़रूरी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यूएस के टीका प्रोग्राम के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मॉन्सेफ स्लोई बताते हैं कि मार्च के अंत तक 100 मिलियन लोगों को टीका लगाया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ पर बोलते हुए उन्होंने कहा,
We are very concerned by the hesitancy that we see, the level of hesitancy that we see. But we hope that now that all the data is out and available to be discussed in detail, that people will keep their mind open to listen to the data and hopefully agree that this is a very effective and safe vaccine and therefore take it.
और भारत के समाचारों में, आज भारत में किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरुद्ध और भी जोर पकड़ गया है। किसान हजारों की संख्या में नवंबर के अंत से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज किसान एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं और देश भर में धरना भी देंगे। पिछले मंगलवार को उन्होंने भारत बंद का आह्वान भी किया था। कई राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियंस ने भी किसानों का समर्थन किया है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत के कई दौर चले हैं, मगर वे इस बात पर डटे हुए हैं कि जब तक नए कानूनों को पलटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जारी ही रहेगा। दिल्ली से लगे हाईवे को खोलने के निर्णय पर किसान संगठनों में बंटाव हो गया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने 14 दिनों से बंद कर रखा था। भारतीय किसान यूनियन गुट के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भेंट करने के बाद रास्ता खोलने का फैसला किया है। कल रविवार के दिन आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे भानु गुट में तीव्र मतभेद उभर आए। नोएडा से दिल्ली जाने वाले चिल्ला बॉर्डर को खोलने को लेकर गुट में फूट हो गई है। उनके अध्यक्ष ने जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके बॉर्डर खोलने का फैसला किया तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भूख हड़ताल कर दी। साथ ही इस संगठन के महासचिव और प्रवक्ता ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। एक नज़र डालते हैं अब मुद्रा दरों पर। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर भारत के 55.57 रुपयों के बराबर है और यह समाचार लिखने तक ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर यूएस के 75 सेंट के बराबर है। और जाते जाते एक नज़र डालते हैं कल यानी मंगलवार के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों के मौसम और तापमान पर। कल पर्थ में भई धूप रहेगी, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी गर्मी होगी। एडलेड में आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे, न्यूनतम 19 अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी अधिकतर धूप रहेगी, न्यूनतम 21 अधिकतम 31। होबार्ट में बारिश की संभावना, न्यूनतम 19 अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। और कैनबरा में भी एक आध बौछारें, न्यूनतम 14 अधिकतम 25। सिडनी में भी वही बारिश होगी कल, न्यूनतम 20 अधिकतम 25। ब्रिस्बेन में भी बारिश, न्यूनतम 23 अधिकतम 29। डार्विन में बारिश और तूफान की संभावना, न्यूनतम तापमान वहां होगा 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।